without having taken half of your time.
But
definitely
you
only try to love. And you learn it, the scholar, they say,
Paramadvaiti Maharaj.
Paramadvaiti Maharaj is here.
Bhakti Alok.
Bhakti Alok. Bhakti Alok. Paramadvaiti Maharaj is here, a very influential speaker. I request him. So, बहुत सुंदर सो मेनी गुड थिंग्स रिमेंबर मी जैनम ऑफ पर्म के बाद मिनिस्ट्री या फिर स्वयं कृष्णपाल कृष्ण भक्ति जाजावर महाराज
विचार
भक्ति
रक्षक महाराज
I met them. I am fortunate to meet with all the high class of them. But also, I met to whom he has not met. Param Pujya Pad, Nemi Maharaj. Oh, he was Nemi Maharaj. By Khanas
Maharaj.
Oh, Pujya Pad Giri Maharaj. His song was like roaring cloud, roaring more than that. Asham Maharaj. Oh, Pan Maharaj not less than
anyone.
Oh, Pujya Pad Kati Maharaj. If one living or the man living here, all began to love.
And tallest among all disciples of Srila Prabhupada.
Also, I was serving till 60 years my good day. Oh. He was loyal. After so many. So, if he will follow them, really our party will. Even that we are so many in groups preaching here, there, it is okay. But we should try to associate among us and preach the mission in whole world. As Shiksha Guru Shri Bhakti Vedanta Swami was preaching. Now, coming to Madhavad Gita Adhanti. अभी हम लोग माधुर्य का जमीन है भक्ति के लिए विरोधी था देखो स्पीचर अगेंस्ट भक्ति के संबंध में विचार कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है. इट इज सो एसेंशियल. यदि भक्ति विरोधी भाव दूर न हो भक्ति में एक इंच भी हम नहीं बढ़ सकते. श्रेष्ठ विश्वनाथ भक्ति का दुखी ने माधुर्य का दुखी ने महाप्रभु की मधुर कृपा को सरस कृपा को अनुभव कक्ष में डूबने के लिए ये सब अपनाया. पहले सब अनर्थों को छोड़ो. जैसा प्रकार के अनर्थों का वर्णन करते थे वे सेवापराध नमापराध वैष्णवपराध और भगवत अपराधों का वर्णन किया. भगवान के श्री चरणों में विग्रह सेवा में जो अपराध होते हैं सेवा उनको छोड़ना चाहिए. दूसरे भगवान के नाम के प्रति जो अपराध होता है उन्हें नम अपराध कहते हैं। वैष्णव या भागवतों के प्रति जो अपराध होते हैं उन्हें वैष्णव अपराध कहते हैं। और भगवान कृष्ण या राम और या विष्णु इत्यादि के अपराध होते हैं उन्हें भगवत अपराध। यद्यपि वो सब एक ही हैं, नम अपराध में से भी आ जाते हैं, तो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हम लोगों को समझाने के लिए इन सब का वर्णन किया। बताया गया है पाप का संबंध शरीर और मन से, और अपराध का संबंध आत्मा से है। पाप भोगने पर दूर हो जाते हैं, किंतु भक्ति को स्पर्श नहीं करता। पाप दूर हो जाए फिर भक्ति हो जाए, किंतु अपराध सजी नहीं होती। वे भक्ति को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। बिना अपराध का अर्थ ही है अपराध। राज माने संतोष, प्रिय
प्रीति,
जो भगवान की और वैष्णव की प्रियता को संतोष को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको कहते हैं अपराध। नमापराध से भगवान नाम प्रभु का, वैष्णव अपराध से वैष्णवों का, और भगवत अपराध में भगवान का संतोष दूर हो जाता है। इधर खबरदार ऐसे काम मत करो। सेवा, नाम, वैष्णव तथा भगवान की अप्रसन्नता में भगवत भक्ति कैसे रह सकती, नहीं बढ़ सकती। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करो जिसे भगवान नाम, भगवान, वैष्णव, भक्त इनके चरणों में अपराध। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं देखो अपराध उत्थो जो पहले कहा गया है उसे केवल नाम अपराध को समझो, सेवा अपराध को मत समझो, क्योंकि जितने भी भजनशील भक्त लोग हैं, साधक भगवान नाम ग्रहण करते हैं, कोई संख्या पूर्वक नाम करता है, कोई उच्च स्तर से नाम संकीर्तन करता है नियम से, अतः नाम से ऐसा नाम करने से अपराध दूर होता है। फिर गीता, भागवत के स्तोत्र, स्वामियों के स्तोत्र इत्यादि पढ़ने से, पाठ करने से सेवा अपराध भी दूर हो जाता है। विशेषतः प्रतिदिन नियम से श्रद्धा पूर्वक भगवान की श्री विग्रह की सेवा यदि कोई करता है तो सेवा अपराध निवृत्त हो जाते हैं। अतः सेवा अपराधों का अंकुर ही नहीं उचित हो पाता, और न सेवा अपराधों से अनर्थ की संभावना ही रहती है। अतः अपराध अनर्थ से नाम अपराध ही रक्षित होता है सेवा अपराध में। Try to understand सेवा अपराध, इससे बचने की चेष्टा करो। भगवान के मंदिर में किसी सवारी पर चढ़कर जूता पहनकर मत जाओ। भगवान के उत्सव में उप समारोह से मत मनाओ। भगवत उत्सवों को विशेष को क्या कहते हैं
आरंभ
आठ नंबर के साथ में मत मनाओ। जैसे जन्माष्टमी मनाने लगे और उत्सव में ऐसे रम गए जो भगवान को भी भूल गए, भगवान का स्मरण भी लोगों को खिलाने पिलाने में लग गए और बस भक्ति सर्व साज रूप में जो भगवान का स्मरण हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, ऐसे उसको मनाना चाहिए। नगर संकीर्तन किया, हजारों लोगों को कृष्ण नाम सुना दिया, वो सब हुआ, लाखों लोग आए और हरी कथा हो रही है, भगवान का नाम हो रहा है और उत्सव में भी सबको साथ साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बोलो शरीर अविद्या जा हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
मथुरा भी दो और उसको ऐसे ही हम लोग करते हैं। भगवान की सवारी आते देखकर के प्रणाम न करना अपराध है, प्रणाम करो, झूठे मुंह से भगवान का दर्शन न करो, आ रहे हो और भगवान का दर्शन कर दिया, झूठे मुंह से मत करो, भगवान के साथ सामने खड़े खड़े घूम करके परिक्रमा करो। मैंने ठाकुर जी सामने है ना, कोई परिक्रमा कर रहे हैं तो ठाकुर जी के तरफ में पीठ मत देखो, पैर फैला करके मत बैठो ऐसे। अब जैसे मैं हूँ और पैर फैला दिया आप लोगों का, ये अपराध हो गया। ठाकुर जी के सामने पैर मत फैलाओ, गुरु जी के सामने पैर मत फैलाओ, पैर पर पैर रख करके मत बैठो, ठाकुर जी के आगे सो मत, जहाँ हरी कथा हो रही है मत सो, उनके सामने खड़े हो जाओ और नहीं तो मिर्ची की बुकनी लेकर के आंख में थोड़ा सा लगा दो। ठाकुर जी के सामने भोजन मत करो, गुरु जी के सामने भोजन मत करो, झूठ मत बोलो ठाकुर जी के सामने, जोर से मत बोलो, संसारिक बातचीत मत करो। यहाँ भी भगवान की कथा हो रही है, संसारिक बात मत करो, संसारिक दुखों से दुखित होकर के उनके सामने मत रहो, राधे राधे कह करके, कृष्ण कृष्ण कह करके, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कह करके रो खूब, किंतु संसारिक बात के लिए मत रहो, किसी पर कृपा मत करो, किसी के ऊपर में कृपा मत करो, दूसरों के प्रति किसी को दंड मत दो, ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी के सामने ही किसी को मारने लगे मत करो, किसी के प्रति कठोर वचन मत बोलो ठाकुर जी के सामने, याद रखो भाइयों, और कंबल में ओढ़ करके सेवा में मत जाओ, कंबल गिरेंगे पानी में जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। किसी की निंदा मत करो ठाकुर जी के सामने, गुरु जी के सामने किसी की भी निंदा मत करो, किसी की स्तुति मत करो ठाकुर जी के सामने, हंसी दिला भी मत करो और अथवा भाई मत छोड़ो, जरा कम खाओ, हजम हो पेट, ठाकुर जी को नीरस पदार्थ भोग मत लगाओ, रसयुक्त फल लगाओ, नए नए फल बिना भगवान को अर्पण किए मत ग्रहण करो, भगवान के उत्सव के लिए जाएंगे सामग्री से उसके पहले कोई चीज ले लिया किसी को दे दिया ये मत करो। अपनी स्तुति मत करो, गुरु की स्तुति में मौन रहना, अर्थात गुरु की स्तुति में मुखर रहो, पूजनीय पुरुषों के पीठ पीछे बैठना, गुरु को वैष्णव को पीछे रख करके बैठ मत बैठो, चलते समय यहाँ सभा में बैठे हो सबके ऊपर में शरीर पर पैर दे करके चलते गए, ऐसा मत करो, नीचे झुक करके यदि जाना हो दोनों हाथों को इस प्रकार से झुक करके नम्रता के साथ में जाओ, ऐसा नहीं कि चल रहे हो धड़ धड़ किसी के शरीर पर पैर, किसी के ऊपर में पैर, किसी को लगा लाश, किसी को घूम, ऐसा मत करो, भगवान के सामने किसी को मैं जानवाद मत करूं, केवल गुरु को, गुरु के सिवा किसी को प्रणाम मत करो, किसी देवता की नंदा इत्यादि ये सब चीजें हैं धर्मशास्त्र में। इसका तथ्य भी बहुत से अपराध हैं जैसे बचना चाहिए, है तो छोटी छोटी बात, फिर तो सेवा अपराध है, सेवक नहीं नष्ट हो। हाँ ठीक है, व्यंगो पक्रमे ध्वंसो मत्थर्मस्य उद्भव अनुवादी मया व्यवसिता सम्यक निर्गुणत्वात् आशिषा। गीता में भी ऐसे ही कहा गया है, यदि आरंभ कर दी जाए श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन आचमन इत्यादि, तो यदि समाप्त न हो अर्थात सिद्धि न हो उसके पहले ही
मृत्यु हो जाए,
यदि जीवन पूरा हो जाए
कृष्णदास
के आरंभ कर जाने के बाद बीच में मृत्यु हो जाए, कोई विघ्न बाधा आ जाए, वो भक्ति नष्ट नहीं, फिर दूसरे जन्म में वहीं से आरंभ होगी। भट्ट महाराज जी घर छोड़ करके गए और वन जंगल में जाकर के भावावस्था को प्राप्त हुए, एक हिरणी पर हिरणी के बच्चे के ऊपर में आसक्त हो गए, और फिर क्या हुआ, मरते समय हिरणी की याद करने से बस उसका फल भोग लिया बेमतिया, अपराध नहीं था, नहीं करना चाहिए उस बच्चे को उसने, किंतु बेटे के समान बेटा को तो छोड़ दिया, एक किरणी के बच्चे को उसने करने लगे, हुआ क्या, इतना भक्ति करने पर भी इनकी ये दशा हो तो दूसरों की क्या होगी। तो फिर बाप का फल भोग लेगा और भक्ति की आरंभ हो जाती है, क्योंकि भक्ति निर्गुण है। भगवान ने ये भी कहा दशार्णो अयम जप मात्र सिद्धि भव, दशाक्षर मंत्र गोपाल मंत्र, बाकी हम लोग इसको कितना साढ़े चौबीस और पहले ये दशाक्षर में नहीं हो जाता, तो इसके करने से नाम मात्र से ही सिद्धि को देता है। प्रभक्ति ठाकुर यहाँ पर विचार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत से वचन शास्त्रों में देखे जाते हैं जिनका तात्पर्य स्पष्ट है, भागवत धर्म या भक्ति का अनुष्ठान पूरा न भी हो, जितना हो जाएगा उतना फिर आरंभ हो जाएगा दूसरे जन्म में या विघ्न समाप्त होते ही, और फिर वो फल जरूर प्रदान करता है। इसे यह भी समझाया जा सकता है कि अपराध और पाप के अनुष्ठान से हो रहे हो, भक्ति का अनुष्ठान जितना भी हो रहा है हो चुका है, वह फल उसे बंद नहीं होता। दशाक्षर मंत्र जपने से सिद्धि प्रदान करता है, ये जो पहले कहा गया है। अपराध यदि आदि के द्वारा मंत्र के फल प्रदान में कोई विघ्न होने की आशंका नहीं होती, कैसा भी आचरण मंत्र जब करने वाला करता है उसे मंत्र की सिद्धि। अब यहाँ पर यह बात तो ठीक है, किंतु शंका क्या है, संदेह क्या है, भक्ति अंग अथवा मंत्र के बल पर जो नमा अपराध होता है, जो नमा अपराध भी करता है और साथ साथ में मंत्र भी जपता है, भक्ति भी करता है और सोचता है मेरे भक्ति करने से जो पाप इत्यादि फल है अपराध है ये दूर हो जाता, करता नहीं है, पुनः पुनः करता जाता है, वैष्णव की निंदा करता है, सोचता कि हम तो नाम कर रहे हैं हमारा इसका कोई फल होगा, समझ तो ऐसा करने से वो वज्रलेप हो जाता है,
नाम बोले पाप बुद्धि,
नाम के बल पर पाप बुद्धि हो जाए। इसलिए वैष्णव की, गुरु की और दूसरे लोगों की भी निंदा मत करो, पर चर्चा मत करो, भक्ति के अंग का अनुष्ठान और पूरा छूट जाए, उसकी अंग की हानि हो जाए, मंत्र जप में किसी आचरण की अपेक्षा न रखने पर भी सिद्धि मिल जाना, यदि हम इसलिए सोचते हैं अपराध भी करेंगे, पाप भी करेंगे और नाम करेंगे, भजन करेंगे तो सब दूर है, आजकल यही देखा जा रहा है, आजकल के जीवन में यही देखा जा रहा है, कोई पाप से नहीं डरता, कोई अपराध से नहीं, वैष्णव अपराध से नहीं डरता, और फल ये होता है कि उसका हृदय और कठोर होते 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 और करते करते भीषण नरक मिल जाता है, ऐसा मत करो। तो इसका प्रायश्चित नहीं है, पाप का प्रायश्चित है, किंतु ऐसे अपराधों का कहीं भी पाप की इच्छा लेकर ठाकुर धर्म के आचरण का या मन से जप करने का उपदेश नहीं दिया गया है, उपदेश दिया गया है करने के लिए, किंतु पाप भी करो, अपराध भी करो, वैष्णव को मारो पीटो, उनका अपमान भी करो और हरिनाम भी करो, लाल कपड़ा तुलसी माला हाथ में झोली ये सब भी रहे और करो खूब छू, ऐसे लोग जहन्नम में जाते नरक में जाते। व्यक्तियों को भगवान अपनी प्राप्ति के लिए जो अपने मुख से जो उपाय बताया उसी को भागवत धर्म, वैष्णव धर्म और भक्ति धर्म का भगवान ने स्वयं बताया, उस भागवत धर्म का अवलंबन लेकर के मनुष्य शीघ्रों से पीड़ित नहीं होगा, आंखों को बंद करके जिस प्रकार से सपाट सड़क के ऊपर में एक आदमी दौड़ता है, दौड़ने पर भी न उसे फिरने का न फिसलने का डर है, भागवत धर्म ऐसा है, उसका पथ ऐसा सहज सुंदर है, कोई आंख बंद करके और जोर से दौड़ रहा है उस समय ये ठीक नहीं रहता कि पैर कहाँ पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कुछ ख्याल देखा के भी वो दौड़ता है, किंतु वो दृढ़ता नहीं है, फिसलता नहीं है, यहाँ नेत्र मिल जा आंख को बंद करके दौड़ रहा है, अर्थात नेत्र तो है वो बंद करके दौड़ रहा है, जहां पर पैर पड़ना चाहिए वहां पर नहीं पैर पड़ सकते, कुछ आगे पड़ जाता है, ऐसा यहां पर धावन के द्वारा ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। अब उदाहरण के उदाहरण का बड़ा आप उसको ले रहे हैं। यदि कोई भागवत धर्म का आश्रय ले, जो भगवान ने अपने मुख से बताया है एकादश स्कंध में, भक्ति धर्म क्या है, कैसे भगवान को पाया जा सकता है, इसलिए उस भागवत धर्म का, भक्ति धर्म का, भागवत में लिखे हुए धर्म का यदि कोई आश्रय ले और उस धर्म के समस्त अंगों को जानता हुआ भी, समस्त अंगों को जानता है, अनजान की भांति किसी अनुसंगिक अंग का सब अंगों का पालन नहीं करता, छोड़ भी देता है, परंतु मूल धर्म का अनुष्ठान करता है, भागवत धर्म का अनुष्ठान करता है, तो छोड़ भी देता है, तो वो दोष का भागी नहीं होता, न वो फल से वंचित होता है। यही व्याख्या है। यहाँ निमिलन शब्द का अर्थ आंख बंद कर रहा है, अर्थात स्मृति और स्मृति में नहीं जानता ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए, स्मृति और स्मृति के विषय में, क्योंकि उसे मुख्य अर्थ में बाधाएं हैं, इसको और देखते बताएंगे। इन दोनों पदों से यहाँ 25 प्रकार के सेवा अपराधों के अभाव को क्यों निकाल रहे हैं? देखो हरिनाम कर रहे हैं, भगवान की हरिकथा सुन रहे हैं, प्रेमयी चित्त द्रवित नहीं होता, आंखों से अश्रु धारा यदि नहीं निकलती, समझो जो हमारा अपराध है, जरूर इस जन्म का अपराध या पूर्व जन्म का अपराध है, इसलिए हृदय कठोर बना है, नहीं तो भगवान का नाम इतना मधुर है कि जरूरी चित्त हो जाए, तात्पर्य क्या, जरूर हमें कोई अपराध है इस जन्म का है, क्या करना चाहिए, उसके लिए अनुताप करो, निरंतर हरिनाम करो, और जहां से अपराध हुआ है उनसे कहो हमारा अपराध क्षमा कर, नवदीप धाम में अपराध भंजन पाठ, पुरिया ग्राम वहां पर अपराध के लिए वहां पर जाओ, नहीं तो मन से जाओ, इससे हमारे ज्ञात अज्ञात जितने अपराध होते वैष्णव लोग, हे धाम हे कृष्ण नाम, अब कहते हैं सवारी पर चढ़कर या जूता पहनकर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना ये मना है, सेवा पराध में भी बदलाया गया है, पशु तुल्य मनुष्य हरि के प्रति अपराध करता है क्या है, और नमा अपराध बहुत पहले भी किया गया हो, भगवान नया हो, जब वो इतना मना कर रहे हैं रोज रोज 10-10 बार, और तब वो वैष्णव अपराध कर देते हैं, किसी को कोई मार दिया भी, चोट लगी अस्पताल पे, तो इतना बतलाते हैं तो भी ये सब अपराध है, इतना सुनने के बाद में क्यों होता है, क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं अपने चित्त को, क्यों परचर्चा कर रहे हो, वैष्णव की निंदा क्यों करते हो, इतना मना करने पर भी, इसलिए भाई सावधान हो, इसलिए विघ्नों या लक्षणों से यह अनुमान हो जाए कि यदि ये अपराध का फल है जो हमारे चित्त द्रवित नहीं हो रहा है, तब निरंतर नाम ग्रहण करो, हृदय में पश्चाताप हो, है हमारा जीवन व्यर्थ गया, तो धीरे धीरे भक्ति में निष्ठा पैदा हो जाएगी और फिर हृदय द्रवित होने लग जाएगा, अपराध नष्ट हो जाएंगे। यदि अपराध जानबूझ करके किए गए हों तो भाई और भी अनुताप करना होगा, हर काम करना होगा और भविष्य में हम नहीं कर पाएंगे। यदि कोई सोचे कि शास्त्रों में जैसा लिखा गया है वे लक्षण उस साधु में है कि नहीं, परिणाम करता है कृष्ण को छोड़कर के और किसी की पूजा या सेवा नहीं करता और कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की सेवा भी नहीं चाहता, उनकी प्रसन्नता ही केवल चाहता है, अनन्यता है। किंतु यदि वो क्रोधी है, दुराचारी है, तो ऐसे वैष्णव की निंदा करने से हानि क्या है? सच बात हम यदि कह दिया तो हर्ष क्या है? सचमुच में तो क्रोधी है, हमने कहा जाए ये क्रोधी क्या बहुत भर्त मत करो ऐसा क्षिप्रम बहुत धर्म दुराचारी होने पर भी अनन्यता जो साधु का मूल लक्षण है अनन्यता, उसके द्वारा जल्दी से जल्दी वो दुराचारी व्यक्ति परम धार्मिक हो जाएगा। इसलिए खबरदार उसकी निंदा मत करो, उसके चरणों में अपराध मत करो। सब प्रकार के आचार ही शॉर्ट बुद्धि संस्कार ही नीच जाति जगत को वंचित वंचना करने वाले जिन व्यक्तियों को शास्त्र में दुराचारी कहा गया है, ऐसे दुराचारी को भी भगवान ने कहा कि यदि वे अनन्य रूप से मेरा भजन करता है तो उसे साधु समझो, और यदि साधु है तो कोई बात ही नहीं, खबर का निंदा मत करो। कृपालु अकृत दो तिथिक्षु सर्वदेही नाम सत्यसारो अनवध्यात्मा समाप्त सर्वोपकार एक ये उठाओ। साधु मेरा भक्त कृपालु होता है, समस्त प्राणियों में अत्रो द्रोह नहीं आचरण करता, किसी की बुराई की चिंता नहीं करता, किसी से द्रोह नहीं करता, सुख दुख मान अपमान आदि को सहन करने वाला होता है। भगवान ही सत्य है, वही उनका जीवन है, उनके मन में किसी की पाप की वासना नहीं होती, वह समदर्शी और सलाहकार। ये लक्षण वाले लोग साधु हैं, बाकी लोग असाधु हैं। तो मैं असाधुओं की निंदा करूंगा तो हक क्या, तो सब ही करा मत करो। इसलिए बाबा चक्रबाबी कहते हैं ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, सतांग निंदा उनको भी यदि अनन्य रूप में भजन करने वाले हैं उनको साथ में ही मानो। अभी दुराचारू भक्ति काम अनन्य साधु एवं मंतव्य मंतव्य निश्चित मान नहीं करोगे तो पाप साधुना समचित्ता नाम सूत्रम भक्तात्मान साधु वही जो समचित है, समचित्त के वले हो सकता है जो भगवान को जिन्होंने अपने को आसन कर सकता है। जो अनन्य भाव से भगवान के भजन में लगा हुआ उसने साधु ही मानो, विरक्त संन्यासी आरंगे कपड़े धारण करना वाला साधु व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। कपड़े रंग लिए हैं, सीता माला इत्यादि धारण किए हुए हैं, ऐसे ही व्यक्ति केवल साधु नहीं है, गृहस्थ जगत में भी वर्णाश्रम के आचारों को पालन करने वाला भी यदि व्यक्ति साधु है, अनन्य रूप से मेरी भजन करता है, इसलिए संत निंदा बड़ी भयंकर। भगवान अपने प्रति किए हुए अपराधों को क्षमा कर दे रहे, किंतु संतों के प्रति नाम के प्रति अपराध को भी क्षमा कर सकते हैं किसी स्थिति में, किंतु वैष्णव जो उनके हृदय हैं वो क्षमा नहीं कर सकते। यदि किसी प्रबल अपराध हमने किया हो और साधु वो प्रसन्न नहीं हो रहे हो, वैष्णव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो क्या समझेंगे वो साधु नहीं है? नहीं, तब समझे, क्योंकि भगवान ने समस्त आचारों से हीन सत बुद्धि संस्कार ही नित व्यक्ति और जगत की वंचना करने वाले दुराचारी ही नहीं, बल्कि इन दोषों से कई अधिक कुदुराचारी को भी यदि वो अनन्य रूप से भजन करता उसे साधु नहीं मानते। दुराचारी भजन कर ही नहीं सकता और भजन करने वाला दुराचारी हो ही नहीं सकता, ऐसा मत समझो। इतिहास भरा पड़ा है, इतिहास भरा पड़ा है, उसमें बड़े बड़े वैष्णव को देखा जाता है जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो भी कुछ समय के लिए ऐसा मालूम होता है दुराचारी होगा, ऐसा देखा जाता है, तो ऐसा समझना नहीं चाहिए। कभी कभी भगवान जान बूझ करके करा देते हैं। यदि नमस्कार स्तुति अनुकूल सेवा करने पर भी यदि वो वैष्णव किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं होते तो अतिशय पाश्चात करते हुए नाम संकीर्तन का शरण लो तो तुम्हारा अपराध मुक्त हो जाएगा, जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा भी देखा जाता है कुछ कुछ महाभागवत होते हैं, उनके प्रति यदि कोई अपराध भी करता है, महापराध हो जाने पर भी वो क्रोधित नहीं होते, नहीं होते हैं, तो भी अपराध करने वाली व्यक्ति को अपने शोधन के लिए उन्हें प्रणाम आदि करके अपनी क्षमा मांगना चाहिए। कोई वैष्णव अपराधी वो नहीं माना, कुछ लिया ही नहीं करता, तो भी तुमने समझा कि अपराध किया है तो शोधन के लिए अनुताप करो और उनको प्रणाम इत्यादि के द्वारा क्षमा कराओ, क्योंकि महापुरुषों के चरण की रज क्षमा नहीं करेगी। कृष्ण क्षमा कर दिया किंतु रज क्षमा नहीं करेगी। उसका अपराध का फल देगी, इसलिए उसे प्रार्थना करना उचित है। उसी के लिए फिर कह रहे हैं ऐसे महाभागवत के प्रति किया को अपराध, जब लिया ही नहीं उन्होंने हमारा अपराध, निश्चिंत बैठ जाओ, नहीं उनकी चरणरज नहीं मानेगी, कैसे? सती देवी अपने पिता दक्ष से कहा, जो दुष्ट मनुष्य ये मरे गए शव के समान की जड़ शरीर को जो आत्मा मानते हैं, जैसे तुम हो, नाम नहीं दिया किंतु उनके लिए कहा, शरीर को ही मैं मान रहे हो, यदि इससे आपस महापुरुष तथा प्रसन्न कर दी, उन्होंने अपराध नहीं किया, अपराध नहीं किया, किंतु व्यापार उसका यज्ञ में ध्वंस हो गया, उसका शरीर शीर काटा गया, यज्ञ में हवन का किया गया, फिर उसको शंकर जी ने बकरे का मुंड दे दिया। शंकर जी ने अपराध नहीं किया तो भी इसे खूब सावधान रहो भाई। महाभागवत गण तुम क्या अपराध कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो उस पर ध्यान ही नहीं देते, उनको सोचने का समय नहीं, भगवान की लीलाओं के स्मरण में सब समय बोलते ठीक है। परंतु उनके चरणों की दूरी इस अपराध को सहन नहीं करती है और उनके तेज को गुण को स्वार्थ और परमार्थ को नष्ट करती है। श्रीमद् भागवत में एक ऐसा याद है जो वैष्णव को निंदा या क्या करते हैं उनकी आयु, हाँ अंति आयु जस श्री आशीष है ये वचन वैष्णव को इसे को बचना चाहिए।
महत्व अधिक क्रमीण
महत्व अधिक क्रमीण पालकी पर चढ़ करके वो जा रहा था कुछ तत्व उपदेश सुनने के लिए तो अपने देव के आश्रम में अथवा किसी के आश्रम में, बीच में उसका होने वाला कहा बीमार पड़ गया। उन्होंने ढूंढते ढूंढते जड़ भर को देखा नंगे भगवत चिंतन युवक बलिष्ठ शरीर पकड़ करके लगा दिया लग गए और तहारों के साथ में पैर नहीं मिलने से खेती इत्यादि पीड़ों को बचाने के लिए पैर इधर का उधर कर देते थे इसलिए पालकी धोती थी। राजा बिगड़ गया एक दुबला पतला आदमी कमजोर है पालकी नहीं धो सकता ताने मारने लगा तो भी कुछ नहीं कहा चलते रहे। फिर आगे कहेंगे कौन है महाराज हम लोग ठीक चल रहे हैं ये पैर में पैर नहीं मिलाता है। हेलो तुम नहीं जानता कि मैं कौन हूँ अभी जंग दे करके हम लोग भेज दूंगा मैं राजा हूँ। तो उनकी दया उमड़ पड़ी इसलिए कह रहे हैं महाभागवत होता है इनका लीला चरित्र समझना बड़ा भारी कठिन है। अपराध होने की तो बात क्या उनको प्रेम दे देते तब तो ज्ञान दे देते। तो बहुत निंदा करने पर मुस्कुरा दिए और बोले कौन राजा
कौन प्रजा
कौन प्रजा कौन पालकी है तो धोने के लिए ही है कौन मोटा कौन चौड़ा कौन सूक्ष्म ऐसे प्रश्न किए। राजा पालकी से नीचे उतर गया उनके चरणों में गिर गया आप कौन है मैं तुम्हारे वंश में जो राजा भरत थे वही मैं भरत था और फिर सब छोड़ छाड़ करके भजन करने आया किस प्रकार से हमारी हुई और किस प्रकार से अब किस स्थिति में हूँ कृपा करके तुम्हारे सुधार के लिए मैंने ये सब कहा। उन्होंने तो कृपा कर दी। वैष्णव का चरित्र अद्भुत होता है। नित्यानंद प्रभु अपने मारने वाले कंसी को लेकर के मदिरा का कंसी से मारा हुआ फूट गया रक्त की धार कर गिरने लगी और उन्होंने कहा ये मेरे मुझे बचाया महाप्रभु ने आलिंगन किया उसको प्रेम हो गया फिर महाप्रभु ने जाओ मुझे क्षमा मांग। वो भी नित्यानंद प्रभु के चरण में आया हरदास ठाकुर को जो 22 बाजार में मारा अपराध नहीं लिया भगवान प्रभु इसकी रक्षा कर इसको क्षमा करना नहीं माना 22 बाजार में मार कर तो उसका मरा समझ करके नहीं दिया। किंतु हरदास ठाकुर जी कैसे वैष्णव परम अपराध लिया नहीं उनको प्रेम दिया। किंतु देखो भाई ऐसा समझोगे ये तो ठीक है अपने स्थान पर किंतु ऐसा समझोगे मारने से प्रेम दे उनको मारना ही अच्छा है तो हो गया ऐसा मत करो। इसलिए फल से देखो जो तुम्हारा हरिनाम लेने से या भाई कथा सुनने से चित्त श्रवित क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? भगवान का नाम परम शक्तिशाली है, उनकी लीलाएं परम शक्तिशाली है, क्यों नहीं हो रहा? झगड़ा अपराध है, इसलिए ज्ञात अज्ञात अपराधों के लिए अनुताप करो, प्रायश्चित करो और निरंतर हरिनाम करो, यही उपाय।